अगली सुबह अलार्म बजने से निक की नींद खुली। उसने देखा प्रियल उसकी बाहों में किसी बच्चे की तरह सोई हुई थी। निक उसे देखकर मुस्कुराया और उसके माथे पर किस किया। निक ने किस करते हुए कहा, बहुत जिद्दी हो ना तुम, जो चाहती थी वो करवाकर ही दम लिया। अब कितने आराम से सो रही है मैडम, जैसे इंस्टीट्यूट तो जाना ही नहीं है। गुड़िया गुड़िया उठो, प्रियल नींद में बोली। नहीं आप ही सो जाओ ना, निक ने हंसते हुए कहा। हाँ तुमने बोला है, सोऊंगा। इसे तो इसकी दुनिया मिल गई हो जैसे, कैसे आराम से सो रही है। बट सुनो मैं जा रहा हूँ, तुम भी जल्दी उठ जाना, क्लास है तुम्हारी। निक प्रियल को छोड़कर तैयार होकर नीचे आ गया। वहाँ जैन और आलिया ब्रेकफास्ट टेबल पर उसका इंतज़ार कर रहे थे। निक ने कहा, गुड मॉर्निंग आलिया, काश तुम्हारी तरह प्रियल भी जल्दी उठकर मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाती। जैन बोला, भाई अगर जिनी सुन लेती तो गुस्सा हो जाती और बोलती कि निक तुम सारे दिन मेरी प्रियल को परेशान करते रहते हो। निक ने कहा, हाँ बहुत बार जो करती है वो प्रियल से। आलिया ने पूछा, प्रियल कहाँ है? सो रही है मैडम अभी तक। निक ब्रेकफास्ट करने लगा। ब्रेकफास्ट करने के बाद निक इंस्टीट्यूट जाने के लिए जैन और आलिया के साथ निकल गया। उधर प्रियल अभी भी सोई हुई थी। इंस्टीट्यूट में निक की क्लास थी, वो भी प्रियल के स्ट्रीम में। निक उस क्लास को ले रहा था। सब क्लास में आ चुके थे लेकिन प्रियल अभी भी गायब थी। आरोही इधर उधर देखते हुए बोली, ये प्रियल अभी तक क्यों नहीं आई, पक्का डांट खाएगी। वहीं निक ने सोचते हुए कहा, ये मिस शर्मा कहाँ रह गई, पता नहीं क्या होगा इसका। 10 मिनट हो गए मुझे क्लास में आए हुए, मगर ये है कि अभी भी नहीं आई। तभी प्रियल क्लास के बाहर से बोली, कैन आई कम इन? निक ने लेक्चर थिएटर के माइक में कहा, गेट आउट मिस शर्मा, यू आर 10 मिनट्स लेट। तो वहीं निहारिका खुश हो गई, चलो अच्छा हुआ, ये प्रियल निक से जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है, ये मेरे लिए अलग ही मुसीबत बनी पड़ी है। प्रियल ने निक को गुस्से में देखा। निक ने सोचते हुए कहा, ऐसे मत देखो, मैंने तो उठाया था तुम्हें। प्रियल खुद के मन में सोचते हुए बोली, और रात को सोने भी तो नहीं दिया था उसका, ये कहकर उसने मुंह मरोड़ा। निक ने सोचते हुए ही कहा, यहाँ मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ, मेरी भी कुछ बाध्यताएं हैं, ये घर नहीं है हमारा जो गोद में उठाकर क्लास में लेकर आऊँ, लेट आओगे तो यही होगा। प्रियल बोली, घर आइए मैं बताऊंगी आपको। तो निक ने माइक पकड़ा और दोबारा बोला, मिस शर्मा यू कैन गो, आई डोंट लाइक लेट कमर्स। प्रियल को निक ने क्लास में एंटर नहीं होने दिया, वो इंस्टीट्यूट के गार्डन एरिया में चली गई। वहाँ जीनी ने उसे देख लिया। जीनी प्रियल को देखकर उसके पास आई और उसने उससे पूछा, यहाँ क्या कर रही हो तुम, निक की क्लास है ना, वहाँ क्यों नहीं गई? उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया, घर आने दो आज शाम को, मैंने उनकी क्लास ना ली तो मेरा नाम भी प्रियल नहीं है, प्रियल ने मुंह बनाते हुए कहा। जिनी हंस पड़ी, तूने तो ले ली क्लास, तुम एक एक बात मानती हो उसकी, अगर ऐसे रहा तो तुम कैसे लोगी उसकी क्लास? अब से वो मेरे इशारों पर नाचेगा, प्रियल ने चेहरा ऊपर करके और सीना फुलाकर कहा। तुम्हारे ड्रीम्स में, जानती नहीं क्या तुम उसे, वो नहीं नाचने वाला तुम्हारे इशारों पर। प्रियल ने सांस छोड़ी और शरीर को ढीला कर दिया। हाँ यार सही कह रही हो तुम, मैं तो खुद उनकी डांट से बचने का तरीका सोच रही थी, तुम्हारा ना कुछ नहीं हो सकता, प्लीज मेरी हेल्प करो ना, प्रियल जीनी से बात कर रही थी। तभी जीनी को प्रियल के नेक पर निशान का मार्क दिखा। जीनी ने ये देखते ही कहा, मिल गया आइडिया, तुम चलो मेरे साथ मेरे रूम में, तेरे पिता को कैसे हैंडल करना है मैं अच्छे से जानती हूँ। देखो जीनी, तुम मुझे डांट मत पड़वा देना, जानती हो ना उन्हें मौका चाहिए होता है मेरी क्लास लगाने के लिए। अरे नहीं पढ़वाऊंगी, तुम चलो ना मेरे साथ, जिनी उसे अपने साथ ले गई। जिनी प्रियल को लेकर अपने रूम में आई। रूम में आने के बाद उसने निक को मैसेज कर दिया कि क्लास होने के बाद वो उसके रूम में आकर उससे मिले। निक की क्लास ओवर हुई और वो जिनी के रूम में आया। उसने आते ही कहा, क्या है यार मुझे ऐसे ही टाइम नहीं, और तुम होगी? तभी उसने प्रियल को देखा। प्रियल को देखकर वो बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो और क्लास में क्यों नहीं थी? आपने मुझे अंदर आने ही कहा दिया था, तो बाहर खड़ी रहती, कुछ तो सुनाई दे ही जाता। जिनी ने हंसते हुए कहा, तुम इसे छोड़ो एक बार, तुम घर पर पढ़ा देना इसे, तुम मुझसे बात करो एक बार। तुम्हारी बात करनी है? निक ने उससे पूछा। जिनी ने हाथ आगे किया और कहा, लाओ दो मेरे पैसे, याद है हमने बैट लगाई थी? निक हैरान हो गया, कौन सी बैट, मुझे कुछ याद नहीं है। निक ये कहकर बाहर जाने लगा पर जिनी ने उसे खींचकर अंदर ले लिया। निक ने खुद को छुड़ाया और कहा, जिनी क्या कर रही हो तुम? जिनी ने प्रियल के कंधे पर से बाल हटाकर निक को दिखाए और पूछा, ये क्या है? निक प्रियल को घूर घूर कर देखने लगा। प्रियल तुमने बताया इसे सब कुछ? क्या बताया, और आप दोनों क्या बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्रियल बच्चे की तरह बोली। मैं समझाती हूँ तुम्हें, जिनी ने कहा। प्रियल तुम्हारे इस पिता ने बैट लगाई थी, 3 साल से पहले तुम्हारे करीब भी नहीं आएगा और अब ये हार गया। वो निक की तरफ हुई, मेरे पैसे दो मुझे। नहीं मिलेंगे, जाओ निकलो यहाँ से, मेरे यहाँ कोई पेड़ नहीं लगाए जो तुम्हारी शॉपिंग के भी पैसे मैं दूँ और बैट के भी, अपने पिता से जाकर मांगो, प्रियल धीरे से बोली, कंजूस कहीं के। निक प्रियल की तरफ हुआ, तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, और तुम्हारी कंजूसी दिखाई मैंने या इसे भी, अभी तक एक गिफ्ट नहीं दिया आपने मुझे। प्रियल बोली, जॉब दी तो थी, काम भी तो करती ही हूँ, अब तो एक एक चीज गिनवानी पड़ेगी। पता है तुम्हारी इस साल की फीस किसने पे की थी? मैंने, प्रियल बोली, मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, और दूसरी तरफ देखने लगी, तुम जैसे नालायक स्टूडेंट्स को कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती। अगर तुम्हारी जगह तुम्हारा स्ट्रीम मेरे पास होता ना, तो मैं तो पक्का फेल कर देता तुम्हें। हाँ, तो आगे सुनो, मम्मा की नेकलेस भी वापस मैं ही लेकर आया था, और जिस दिन हमारी वेडिंग हुई थी, तुमने जो ड्रेस पहना था वो ड्रेस भी मैंने गिफ्ट की थी शायद। निक ने जल्दबाजी में काफी कुछ कह दिया। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? वो रोने लगी। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया और मुझे बताया भी नहीं। रोते हुए वो निक के गले लग गई। मैं निक को शब्द नहीं मिल रहे थे। मुझे नहीं अच्छा लगता बताना, बस इसलिए नहीं बताया। प्रियल कुछ नहीं बोली और रोती रही। अब रो मत, मुझे अजीब लग रहा है, निक बोला। हाउ सो स्वीट, जिनी ने दोनों को देखकर रिएक्शन दिया। चलो अब पता लग गया है तो अच्छी बात है, तुम दोनों को इस बारे में पता होना चाहिए, तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए क्या किया। ये कहकर उसने प्रियल का ध्यान भटकाने के लिए उससे पूछा, वैसे प्रियल लास्ट नाइट कैसी थी तुम्हारी? प्रियल अलग हुई और वो इतना ही बोली थी कि निक उसे गुस्से से देखने लगा। प्रियल ने अपने मुंह पर उंगली रख ली। जिनी ने सांस छोड़ते हुए कहा, मैं जानकर तो रहूंगी ही, अब नहीं तो बाद में। निक ने सर हिलाया और प्रियल को कहा, तुम जाओ, क्लास है ना तुम्हारी, और हाँ, निहारिका से दूर ही रहना, एंड हाइड योर मार्क्स। प्रियल ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद निक ने जिनी की तरफ देखते हुए कहा, तुम ये बात कभी नहीं जान पाओगी। फिर हल्की सी जीभ दिखाते हुए वहां से चला गया। इवनिंग तक प्रियल की सारी क्लासेस कंप्लीट हो गईं। क्लास खत्म होने के बाद प्रियल, आरोही और आलिया तीनों ग्राउंड में बैठी थी। प्रियल अंगड़ाई लेते हुए बोली, मैं तो थक गई हूँ यार, मुझे बहुत नींद आ रही है। आलिया ने कहा, नींद आ रही है तो उड़ा ले, उन आंटी का कॉल आया था कुकिंग सिखाने के लिए। आरोही बोली, चलना यार, इसी बहाने से मैं भी थोड़ा बहुत सीख जाऊंगी, मैं सच में थक गई यार, कितना हार्ड है ये, मुझे नहीं पढ़ना। प्रियल ने कहा,
ये बात तुम भाई के सामने मत बोल देना, वरना तेरी लाइफ हार्ड हो जाएगी, आलिया बोली। आरोही खड़ी हुई और प्रियल का हाथ पकड़ते हुए उसे उठाने की कोशिश की। तुम चलना यार, और आंटी ने उस दिन क्या कहा था, भूल गई क्या? पिता के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है, और उसी रास्ते पर तूने उस दिन नूडल्स फैलाए थे, आलिया बोली। और कल रात मैंने वो रास्ता पार कर लिया था, प्रियल बोली और शर्मा गई। आलिया और आरोही दोनों हैरान हुए। आलिया ने पूछा, क्या सच कह रही है तुम? आरोही बेखुश थी। आई एम सो हैप्पी फॉर यू आलू, कुछ आया समझ में अब, मैडम को इतनी नींद भला क्यों आ रही है? आलिया ने कहा, हाँ, तभी से जल्दी लगी है घर जाने की। प्रियल, भाई बिजी है, लेट आएंगे, जैन ने बताया था मुझे, चल चलते हैं ना। आरोही और आलिया जबरदस्ती प्रियल को उस इंडियन रेस्टोरेंट में कुकिंग सिखाने ले गईं। रास्ते में उन्होंने और भी बात की, जिसमें प्रियल ने कल रात के बारे में बताया। वहां पहुंचते ही मिसेस सिंह ने उसे देखा, वो थकी थकी लग रही थी, तो उन्होंने उसे देखकर पूछा, क्या हुआ प्रियल, उस दिन तो बहुत एक्साइटेड थी, और आज देखो ऐसी थकी हुई सी क्यों लग रही हो? आरोही बोली, आज हमारी क्लासेस बहुत थी आंटी। मिसेस सिंह किचन की तरफ गईं। कोई बात नहीं, चलो आओ सिखाती हूँ, वैसे भी तुम लोग काफ़ी देर से आए हो तो बाद में रेस्टोरेंट बंद करने का टाइम हो जाएगा। प्रियल साथ चलते हुए बोली, कुछ आसान सा सिखा देना आंटी प्लीज़, मुझे नींद आ रही है। आलिया ने कहा, आरू इसका तो हो गया, अभी से नींद आ रही है इसे तो। मिसेस सिंह ने पूछा, पहले से आता है कुछ, थोड़ा बहुत? प्रियल बोली, हाँ आंटी, बट प्रॉपरली कुछ सिखा देना प्लीज़। मिसेस सिंह प्रियल को आसान सी एक दो डिशेस बनाना सिखाने लगीं। काफ़ी देर तक तीनों वहीं पर रहीं। फिर प्रियल घर आ गई, जबकि आरोही और आलिया इंस्टीट्यूट पहुंच गईं। इंस्टीट्यूट में निक ऑफिस में मिस्टर पॉटर और मिस्टर डिसेना के साथ मिलकर वो साइन वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा था। मिस्टर पॉटर ने कन्फर्म होते हुए कहा, देख मैंने कहा था ना, ये साइन जॉनसन के लग रहे हैं, ये दत्ता के साथ भी, उसके साथ कुछ गड़बड़ी रहता है। मिस्टर डिसेना बोले, इसकी हिस्ट्री भी कुछ ज़्यादा रेप्यूटेड नहीं है। घर कहाँ है इसका? निक ने पूछा। मिस्टर पॉटर ने कहा, लंदन में। तब क्या लंदन जाना पड़ेगा इसके पीछे, यहाँ नहीं आया वाकया ये? मिस्टर डिसेना ने नाम में सिर हिला दिया, नहीं अभी कोई इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग भी नहीं है जो इसे बुला ले। कोई बात नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा अपने सवालों के जवाब लेने, इस आदमी की वजह से मेरी मॉम इस दुनिया में नहीं है और एली भी। मिस्टर पॉटर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, निक अब बार बार एली का नाम मत लिया करो, प्रियल है अब तुम्हारी लाइफ में। मैं ध्यान रखूंगा डैड, प्रियल के सामने एली का नाम ना लूँ, वैसे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन फिर भी मैं ध्यान रखूंगा। मिस्टर डिसेना बोले, अब घर जाओ निक, प्रियल वेट कर रही होगी, और पता है मुझे, आज तुमने उसे क्लास से बाहर निकाल दिया था, वो लेट थी, इसमें मेरी क्या गलती है? जिनी अंदर आते हुए बोली, गलती तो सारी इसी की है डैड, बेटी को बोलो रात को जल्दी सोए। निक उसकी तरफ हुआ, तुझे तो मैं देख लूंगा जिनी, वैसे डैड कौन से कचरे से उठाया था आपने इसे? मिस्टर डिसेना अपने बात मुकरते हुए बोले, नहीं निक, जिनी अब बेटी है मेरी। जिनी ने कहा, आपको याद है डैड कौन से कचरे के डिब्बे से उठाया गया था इस लड़के को? निक ने कहा, मेरे पास मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है। जिनी बोली, पर वो तो मेरे पास भी है। निक ने कहा, ध्यान से देख लेना, बर्थ सर्टिफिकेट या एडॉप्शन का कुछ। ये कहकर निक हंसते हुए ऑफिस रूम से बाहर चला गया। चलो घर चलते हैं, प्रियल जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रही होगी, क्या होगा तुम्हारा वाइफ और क्या होगा मेरा, आज क्लास वाला भी वापस पढ़ाना पड़ेगा। ये कहकर वो घर के लिए चला गया। निक घर पहुंचा तो उसने देखा प्रियल हॉल में सोफे पर सोई हुई थी। निक ने हंसते हुए कहा, इन्हें तो देखो, मैडम आराम से सो रही है, एक ही दिन में इतना थक गई। कुछ मेरी तरफ भी देख लो, इतना थकने के बावजूद तुम इसे सोने नहीं देती, अब खुद यहाँ आराम से सो रही है। वो प्रियल के पास आया और आकर बोला, गुड़िया रूम में सो जाती अगर इतनी ही नींद आ रही थी तो। प्रियल उठो। प्रियल नींद में ही बोली, आप आ गए? निक ने कहा, हाँ आ गया, वापस जाओ। जाओ पर मुझे उठाकर रूम में रख दो प्लीज। निक ने कहा, चलो फिर, खाना खाया तुमने? उसने उसे उठा लिया और रूम में ले जाने लगा। प्रियल बोली, हाँ रेस्टोरेंट में। निक ने सिर हिलाया और फिर प्रियल को रूम में ले जाकर लेटा दिया। अगली सुबह निक उठा तो देखा प्रियल उसके पास में नहीं सोई हुई थी। निक ने ये देखते ही अपने माथे पर हाथ रखा और कहा, ओ गॉड, अब फिर से मुझे उसके हाथ के बने हुए मीठे नूडल्स न खाने पड़े। यार एक तरफ और वो नूडल्स एक तरफ, मैं नहीं खाने वाला, लेकिन पहले रेडी हो जाता हूँ वरना लेट हो जाऊंगा। निक रेडी होकर नीचे आया। नीचे उसने देखा प्रियल ब्रेकफास्ट बनाकर डाइनिंग टेबल पर उसका इंतजार कर रही थी। निक ने बिना खाने की तरफ देखे कहा, गुड़िया मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। ये कहकर उसने बचकर निकलने की कोशिश की। प्रियल बोली, आप इतना डर क्यों रहे हो मुझसे, मैं कौन सी आपकी जान लेने वाली हूँ। निक रुका और बोला, इससे अच्छा तुम जान ही ले लो, पर मैं नहीं खाऊंगी तुम्हारे बनाए हुए मीठे नूडल्स। प्रियल खड़ी हुई और निक को जबरदस्ती बैठाते हुए बोली, आप एक बार टेस्ट तो कीजिए, मैंने मीठे नूडल्स नहीं बनाए हैं, देखिए ये करी और राइस बनाया है, इनमें चीनी तो नहीं मिली हुई ना शुगुन के लिए। प्रियल बोली, नहीं, आप एक बार टेस्ट तो कीजिए प्लीज मेरे लिए। निक ने उसे टेस्ट किया, नॉट बैड, तुमने बनाया है ये? हाँ मैंने कुकिंग क्लासेस अटेंड की थी। ओ तभी थक गई थी, और जब मैं आया था तब तक तुम सो चुकी थी, आपको अच्छा लगा? हाँ अच्छा, मुझे पता है जब नई ब्राइड कुछ नया और अच्छा खाना बनाती है तो उसे कुछ देते हैं एज ए गिफ्ट, और कल तो तुमने कंप्लेन भी की थी कि मैंने तुम्हें गिफ्ट नहीं दिया कोई, बोलो क्या चाहिए। प्रियल सोचते हुए बोली, बहुत परेशान किया ना आपने मुझे, अब मेरी बारी। निक ने कहा, ऐसा भी क्या चाहिए जो सोचने में इतना टाइम लगा रही हो। प्रियल निक के पास आई, बेबी? निक ने कहा, हाँ क्या? प्रियल बोली, हाँ बेबी ही तो चाहिए मुझे, एक प्यारा सा छोटा सा बेबी चाहिए, हमारा बेबी, बिल्कुल आपके जैसा। निक खांसने लगा, क्या बोल रही हो तुम, पहले तुम खुद तो बड़ी हो जाओ, मैं एक साथ दो बच्चे नहीं संभाल सकता हूँ, और तुम्हारे दिमाग में डालता कौन है ये सब। प्रियल बोली, मुझे नहीं पता, आपने मुझे बोला था मैं जो मांगूंगी आप दोगे, मुझे तो एक बेबी ही चाहिए। प्रियल बोल रही थी तभी निक को उसके कान में लगा ब्लूटूथ दिखा। निक ने वो फौरन निकाल लिया। उसे निकालते ही निक ने कहा, जिनी की बेटी मिलना तो मुझे इंस्टीट्यूट में, तुझे तो मैं बताऊंगा, बहुत बच्चे चाहिए तुम दोनों को, इतना ही शौक है तो मैं बोलता हूँ रॉन को। जिनी ने कहा, नहीं। निक ने बिना उसकी बात सुने कॉल कट कर दिया। प्रियल पीछे जाते हुए बोली, मुझे कोई बच्चा वगैरह नहीं चाहिए। निक उसके पास आया और प्रियल को जबरदस्ती गले लगाते हुए कहा, नहीं चाहिए तुम्हें। प्रियल बोली, नहीं मैं तो अभी खुद एक बच्ची हूँ, मुझसे कहाँ बच्चे संभलेंगे। निक रुका और हाथ दरवाजे की तरफ करते हुए बोला, तो जाओ इंस्टीट्यूट में अभी, साथ चले। नहीं मैं लंदन जा रहा हूँ अकेले, प्लीज मुझे भी ले चलिए, हमारा हनीमून भी हो जाएगा, अभी आपने बोला था कि गिफ्ट देंगे, मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी, प्लीज लंदन ले चलिए ना। चुप, सामने वाले को बोलने दोगी तुम? प्लीज मुझे जाना है, वो जिद करने लगी। निक ने कुछ सोचा और कहा, ठीक है मगर एक शर्त पर, तुम वहां मेरी हर बात मानोगी। प्रियल ने इसके लिए हाँ कर दी। तब ठीक है, जाओ और पैकिंग कर लो, और हाँ उसके बाद अच्छे से स्टडी करोगी ना। प्रियल निक के गले लगते हुए बोली, आई लव यू पितादेव, आई प्रॉमिस मैं अच्छे से पढ़ूंगी। निक ने सोचते हुए कहा, एकदम बच्ची है ये भी, और बच्चे और चाहिए मैडम को। ये कहकर वो मन ही मन हंस पड़ा।